पद 40 संख्या 9 का गुप्त इतिहास सामर्थ्य महिमा और दुख।
पतरस पानियम कैसरिया फिलिप्पे में है, जो उन तीन अफसरों के मध्य से केवल 6 या 8 दिन पहले है जब पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु के साथ अकेले गए थे। पहला अवसर जायरुस की 12 वर्षीय पुत्री के पुनर्जीवन में उसकी सामर्थ्य के प्रदर्शन का था, दूसरा रूपांतरण के पर्वत पर उसकी महिमा के प्रदर्शन का, और तीसरा गतसमनी में उसके दुख भोग के प्रदर्शन का था। अध्याय 11 में पानियम पर पतरस पद 16 के क्रूस से ठीक पहले स्थित है। पर्वत उन तीन शिष्यों की 3 विशिष्ट यात्राओं का मध्य बिंदु था। पर्वत पर स्वर्गीय पिता ने भी 3 अवसरों में से दूसरी बार वचन कहा। पिता ने बपतिस्मे के समय, पर्वत पर और फिर क्रूस से ठीक पहले कहा। पतरस 2 बार 3 विशिष्ट घटनाओं के मध्य बिंदु पर है। वो मत्ती के अध्याय 11 से 22 तक का भी मध्य बिंदु है।
गधे ने अपनी जोरदार आवाज से मुझे चौंका दिया और मैं पीछे हट गया। उसने फिर से रेंकना शुरू किया, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से व्याकुल हो। मैंने उसे शांत करने का प्रयत्न किया, पर वो लगातार अपने कान झटकता और अंधेरे मार्ग की ओर घूरता रहा। तभी मुझे स्मरण हुआ कि वचन में लिखा है कि एक गधे ने अपने स्वामी से भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा था, क्योंकि यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी थीं। मैं ठिठक गया, ये सोचते हुए कि कहीं मैं भी उस भविष्यद् वक्ता की भांति अपने ही मार्ग की अंधता में तो नहीं चल रहा।
विजयी प्रवेश से पहले पर्वत का अनुभव हुआ, जिसका आरंभ उस गधे के खोले जाने से हुआ जो भेंट को यरूशलेम में ले जाने वाला था। जिस प्रकार अब्राहम का गधा मोरिया पर भेंट के लिए लकड़ी ले गया था, जो यरूशलेम में मंदिर का प्राचीन स्थल था। लेव्य व्यवस्था 23 की क्रमरेखा मोद्रियो का पर्व उस गधे के भामेश सारंभ कार्पृत सारा असुंश का अनुभव विजयी प्रवेश से पहले हुआ, और इस प्रकार पतरस को लेव्य व्यवस्था 23 के 29 दिनों के इतिहास में स्थित करता है, जो पिंतेकुस्त के काल के साथ संरेखित है। 29 दिनों में मंदिर परीक्षा उन अभ्यर्थियों पर लाया जाता है जो 80 पराक्रमी याचकों में सम्मिलित होने वाले हैं। पवित्र स्थान में राजा उज्जियाह के विद्रोह की गवाही में उन 80 याचकों की पहचान पराक्रमी के रूप में की गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ऐसे याजक भी थे जिन्होंने भाग नहीं लिया।
और याजक अजरियाह उसके पीछे भीतर गया, और उसके साथ यहोवा के 80 याजक थे जो वीर पुरुष थे, और उन्होंने राजा उज्जियाह का सामना किया और उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, परंतु हारून के पुत्र याजकों का है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। पवित्र स्थान से बाहर निकल जा, क्योंकि तूने अपराध किया है, और ये तेरे लिए यहोवा परमेश्वर की ओर से आदर का कारण न होगा। 2 इतिहास 26:17-18।
पराक्रमी याजक वे हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहां कहीं वो जाता है चलते हैं।
ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, क्योंकि वे कुंजवारे हैं। ये वे हैं जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए कि परमेश्वर और मेमने के लिए पहले फल ठहरे। प्रकाशित वाक्य 1404।
यहूदा के गोत्र का सिंह अपने लोगों को परम पवित्र स्थान में ले जाता है और उन्हें वाचा के संदूक के भीतर दृष्टि डालने तथा उस महायाजक पर मनन करने को कहता है, जो वहां पाप के मिटा दिए जाने के अपने अंतिम कार्य में सेवा कर रहा है। पतरस 31 दिसंबर 2023 को पुनर्जीवित किया गया, और उसके बाद उसे इस आधारभूत परीक्षा का सामना करना पड़ा कि भविष्यवाणी की बाह्य दर्शन रेखा की स्थापना में रोम की क्या भूमिका है। फिर मंदिर की दूसरी परीक्षा पतरस के लिए आई, और वहीं आंतरिक रेखा का दर्शन दानियल अध्याय 10 के दर्पण दर्शन में प्रस्तुत किया गया है। पतरस ने 18 जुलाई 2020 को अपने प्रभु का इनकार किया था, और उसने ऐसा 3 बार किया।
पतरस ने 3 बार खुलेआम अपने प्रभु का इनकार किया था, और 3 बार यीशु ने उससे उसके प्रेम और निष्ठा का आश्वासन प्राप्त किया। उस तीक्ष्ण प्रश्न को उसके घायल हृदय में कांटेदार बाण के समान गहराई तक पहुंचाते हुए एकत्रित शिष्यों के सामने यीशु ने पतरस के पश्चाताप की गहराई प्रकट की और दिखाया कि जो शिष्य कभी डींग मारता था वो कितनी पूर्ण रीति से डींग किया जा चुका था। The Desire of Ages, 8:1.
पतस उपासकों के दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था।
फरीसी और महसूल लेने वाले के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरित पतरस के इतिहास में एक शिक्षा निहित है। अपने प्रारंभिक शिष्यत्व में पतरस अपने आप को दृढ़ समझता था। फरीसी के समान अपने ही अनुमान में वो अन्य मनुष्यों के समान नहीं था। जब मसीह ने अपने विश्वासघात की पूर्व संध्या पर अपने चेलों को पहले से चेतावनी दी, तुम सब इसी रात मेरे कारण ठोकर खाओगे, तब पतरस ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, यदि सब ठोकर खाए तो भी मैं नहीं। मरकुस 14:27-29। पतरस अपने स्वयं के संकट को नहीं जानता था। आत्मविश्वास ने उसे भटका दिया। वो अपने आप को परीक्षा का सामना करने में समर्थ समझता था, परंतु कुछ ही घड़ियों में परीक्षा आ पहुंची और उसने शाप देते और शपथ खाते हुए अपने प्रभु का इनकार कर दिया। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 5।
चुंगी लेने वाला अपने घर धर्मी ठहरा कर गया।
फरीसी और चुंगी लेने वाला उन दो महान वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें परमेश्वर की उपासना करने आने वाले लोग विभाजित होते हैं। उनके प्रथम दो प्रतिनिधि उन प्रथम दो बच्चों में पाए जाते हैं जो संसार में जन्मे थे। क्राइस्ट्स ऑब्जेक्ट लेसन्स 152।
हाबिल और चुंगी लेने वाला विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के प्रतीक है।
और चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था। वो अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर उठाना न चाहता था, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहता था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, ये मनुष्य दूसरे की अपेक्षा धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बढ़ाता है वो घटाया जाएगा, और जो अपने आप को दीन करता है वो बढ़ाया जाएगा। लूका 18:13-14।
8 कनाडा मार्क वाक्य 18 के स्वर्ग दूत के अवतरण के साथ था।
प्रभु ने अपनी महान करुणा में एल्डर्स वैगनर और जोन्स के द्वारा अपनी प्रजा के लिए एक अत्यंत बहुमूल्य संदेश भेजा। इस संदेश का उद्देश्य संसार के सम्मुख और अधिक प्रमुखता से ऊंचा उठाए गए उद्धारकर्ता को, जो समस्त संसार के पापों के लिए बलिदान है, प्रस्तुत करना था। इसने प्रतिभू के द्वारा विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराए जाने को प्रस्तुत किया। इसने लोगों को मसीह की उस धार्मिकता को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जो परमेश्वर की समस्त आज्ञाओं के पालन में प्रकट होती है। बहुतों ने यीशु को अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया था। उन्हें अपनी आंखें उसके दिव्य व्यक्तित्व, उसके गुणों और मानव परिवार के प्रति उसके अपरिवर्तनीय प्रेम की ओर फेरने की आवश्यकता थी। समस्त सामर्थ्य उसके हाथों में दी गई है ताकि वो मनुष्यों को समृद्धि वरदान बांटे और असहाय मानवीय कर्ता को अपनी ही धार्मिकता का अमूल्य वरदान प्रदान करे। यही वो संदेश है जिसे परमेश्वर ने संसार को दिया जाने की आज्ञा दी है। यही तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है जिसका ऊंचे शब्द से प्रचार किया जाना है और जिसके साथ उसके आत्मा का प्रचुर परिमाण में उंडेला जाना संलग्न है। Testimonies to Ministers 91।
लौदिकिया का संदेश।
A.T. Jones और E.J. Wagner के द्वारा हमें दिया गया संदेश लौदिकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश है। और हाय उस किसी पर जो सत्य पर विश्वास करने का दावा तो करता है, तो भी दूसरों पर परमेश्वर प्रदत्त किरणों को परावर्तित नहीं करता। The 1888 Materials, 1053।
उत्तर वर्षा का संदेश।
उत्तर वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसनी है। एक सामर्थी स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरना है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो जानी है। रिव्यू एंड हेराल्ड 21 अप्रैल 1891।
न्यूयॉर्क नगर और X11 मेरे।
अब ये बात कहाँ से आई कि मैंने ये घोषणा की है कि न्यूयॉर्क ज्वारीय लहर द्वारा बहा दिया जाएगा? ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने इतना अवश्य कहा है कि जब मैं वहाँ एक के ऊपर एक मंजिल उठती हुई उन विशाल इमारतों को देखती थी, तब मैंने कहा, जब प्रभु पृथ्वी को भयानक रीति से कंपाने के लिए उठ खड़ा होगा, तब कितने भयंकर दृश्य घटित होंगे। तब प्रकाशित वाक्य 18:1-3 के वचन पूरे होंगे। प्रकाशित वाक्य का पूरा 18वां अध्याय इस बात की चेतावनी है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है, परंतु न्यूयॉर्क पर विशेष रूप से क्या आने वाला है, इसके विषय में मुझे कोई विशेष प्रकाश नहीं है। केवल इतना जानती हूँ कि एक दिन वहाँ की वे महान इमारतें परमेश्वर की सामर्थ्य के पलटने और उलट देने से ढा दी जाएंगी। मुझे जो प्रकाश दिया गया है उसके अनुसार मैं जानती हूँ कि संसार में विनाश है। प्रभु का एक वचन उसकी महाशक्तिशाली सामर्थ्य का एक स्पर्श और ये विशाल संरचनाएं गिर पड़ेंगी। ऐसे दृश्य घटित होंगे जिनकी भयावहता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिव्यू एंड हेरल्ड, July 5, 1906।
चुंगी लेने वाला पतरस उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराई जाती है, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना तीसरे स्वर्ग दूत का संदेश है। ये लौदिकिया का संदेश है जो 9:11 पर पहुंचा, जब न्यूयॉर्क की बड़ी इमारतें गिर पड़ीं और प्रकाशित वाक्य 18:13 पूर्ण हुआ। तब पिछली वर्षा छिड़कने लगी और 1,44,000 की मुहरबंदी आरंभ हुई। 1,44,000 की मुहरबंदी के समय के अंत में प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल के रूप में उतरा और 3 परीक्षाओं के द्वारा पतरस को जिलाया। पहली परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को आरंभ हुई और उसने उस आधारभूत सत्य का प्रतिनिधित्व किया कि दानियल 11 के पद 14 में रोम वही शक्ति है जो दर्शन को स्थापित करती है। वो दर्शन चादोन दर्शन है जो भविष्यवाणी की बाहरी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सुलेमान जीवन या मृत्यु कहता है।
जहां जाजों दर्शन नहीं होता वहां लोग नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य है। नीति वचन 29:18।
पतरस की दूसरी परीक्षा मंदिर की वो परीक्षा है जिसके लिए विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना आवश्यक है, जैसा कि बहन व्हाइट ने अपने प्रथम दर्शनों में चित्रित किया। वहां उसने 7वें दिन के सप्त की आज्ञा को अन्य 9 आज्ञाओं के ऊपर प्रकाशमान देखा। न्याय के आरंभ में वो सिद्धांत उस अवतार के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम दिनों में न्याय के समापन के समय अन्य भविष्यवाणी संबंधी सिद्धांतों के ऊपर प्रकाशमान होता है। मसीह के देवी होने पर भी, यद्यपि वो पाप से अपरिचित था, अपने ऊपर पतित पापमय देह धारण कर लेना विविध प्रकार के दृष्टांतों में निरूपित किया गया है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 7 समयों का सिद्धांत है। 7 समयों का सिद्धांत मिलर की भविष्यवाणी संबंधी खोजों का अल्फा था, और 1856 में वही सिद्धांत उस ओमेगा सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता था जो मिलराइट इतिहास में उस बिंदु को सूचित करता है जहां मिलराइट फिलाडेल्फियाई एडवेंटवाद ने 7 वर्षों तक विद्रोह किया, और 1884-83 में लाओदीकियाए छांदे एडवेंटिस्ट कलीसिया बन गया। ये हिचकिल 37 की 2 लकड़ियां उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध 2520 वर्षीय 2 न्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरी राज्य मानवीय देह का प्रतिनिधित्व करता है और दक्षिणी राज्य उस मन का जिसे मसीह के मन के साथ एकीकृत होने के लिए अभिकल्पित किया गया था। इस प्रकार दिव्यता मानवता के साथ संयुक्त होती। यही अवतार के सिद्धांत का एक सरल रूप में निरूपण है। 7 काल मिले राइट इतिहास का अल्फा और ओमेगा था, और क्योंकि वो अवतार का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए वो 1844 के अल्फा सप्त सिद्धांत के संबंध में 7th डे एडवेंटिस्ट इतिहास का भी ओमेगा है। 1 7वें दिन के सप्त का चिन्ह है और दूसरा 7वें वर्ष के सप्त का चिन्ह।
पतरस का नाम पानियम में बदला जाता है जो चुने हुए लोगों के साथ प्रथम वाचा के अब्राहमी प्रतिनिधित्व का दूसरा चरण था, और पतरस अपने दूसरे चरण में चुने हुए लोगों के साथ अंतिम वाचा का प्रतिनिधि बन जाता है। ये 11 से 22 अध्यायों की रेखा में दूसरा चरण है, और ये उन 3 अवसरों में दूसरा है जब पतरस, याकूब और यूहन्ना अन्य चेलों से अलग यीशु के साथ गए, तथा ये उन 3 अवसरों में भी दूसरा है जब स्वर्गीय पिता ने वाणी की। नीरो की रेखा राफिया और पानियम के युद्धों के मध्य बिंदु पर समाप्त होती है, क्योंकि वो 250 वर्षों की उन अन्य 2 अवधियों के साथ संरेखित होती है जो 450 ईसा पूर्व और 796 में आरंभ हुई थी। 450 ईसा पूर्व 207 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ और 796 का अंत 2026 में होता है। पतरस 210 ईसा पूर्व 2026 313 और उस मंदिर परीक्षा पर स्थित है जो गधी के खोलने की तीसरी तथा निर्णायक परीक्षा से पहले आती है, जिसका प्रतिनिधित्व तुरहियों के पर्व के रूप में किया गया है।
पतरस की परीक्षा यह है कि वो मसीह का अनुसरण करते हुए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे, और उसका कार्य यह है कि वो नैशविल के अग्निगोलों के संदेश को संशोधित करे और फिर उस संशोधित संदेश की घोषणा करे। पत्रस का नैशविल के अग्निगोलों का संदेश पिंतेकोस्त का वही संदेश है जो पहले ऊपरी कक्ष में और उसके बाद मंदिर में प्रस्तुत किया गया था। वो अपना संदेश इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसमें नैशविल के अग्निगोलों की पहचान और राफिया की लड़ाई की परिपूर्ति पानियम की लड़ाई के संबंध में दिखाई देती है, जो पद 16 के रविवार विधि पर एक्टियम की लड़ाई बन जाती है। पद 16 की रविवार विधि, पद 41 और पद 22 की भी वही रविवार विधि है। ये तीनों पद पद 41 के साथ भी मेल खाते हैं, जहां 583 में पोपतंत्र ने नियंत्रण ग्रहण किया और ओर्लियों की तीसरी परिषद में एक रविवार विधि पारित की। वे पद जो पद 31 तक ले जाते हैं उन मार्ग जिहनों की पहचान करते हैं जिन्होंने 543 की रविवार विधि तक पहुंचाया और उस इतिहास का रूपक है जो शीघ्र आने वाली रविवार विधि से पहले घटित होता है।
क्योंकि कित्तीम के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, इसलिए वो खेदित होगा और लौट जाएगा और पवित्र वाचा के विरुद्ध क्रोध प्रकट करेगा। वो ऐसा ही करेगा, वो फिर लौटकर उन लोगों के साथ समझौता करेगा जो पवित्र वाचा को त्याग देते हैं, और सेनाएं उसकी ओर से खड़ी होंगी और वे बलस्थान के पवित्र स्थान को अशुद्ध करेंगी और नित्य बलिदान को हटा देंगी, और वे उस घृणित वस्तु को स्थापित करेंगी जो उजाड़ करती है। दानियल 11:30-31।
कित्तीम के जहाज वैंडलों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका प्रतिनिधित्व प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में दूसरी तुरही के रूप में भी किया गया है। रोम का क्रमिक पतन 330 में आरंभ हुआ, जब कॉन्स्टेंटीन ने राज्य को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया। इसके पश्चात उसने उसे अपने तीन पुत्रों में बांट दिया। रोमी साम्राज्य, जो एक्टियम के युद्ध के समय से अजेय रहा था, तब दो भागों में विभाजित हुआ, फिर तीन भागों में। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 8 की पहली चार तुरहियां उन शत्रुओं के आक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने चौहनंग के 30 शतासन में पश्चिमी रोम का अंत कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल में पूर्वी रोम 5वीं तुरही के अंत और 6ठी तुरही के आरंभ तक बना रहा, जो क्रमशः पहली और दूसरी हाय भी है। पहली हाय की 150 वर्षों की समय भविष्यवाणी उसी तिथि पर समाप्त हुई जिस तिथि पर दूसरी हाय की समय भविष्यवाणी आरंभ हुई। वो तिथि 43-53 भागों के हाथों कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन थी।
बाबुल एक ही रात में गिर पड़ा। संभव है आप तर्क करें कि कुरुश को पहले नदी की धारा मोड़नी पड़ी और उसमें कुछ समय लगा, किंतु बाबुल का पतन एक ही रात में हुआ, जबकि रोम का पतन 1023 वर्षों में विस्तृत था। उन वर्षों में विशिष्ट भविष्यवाणीगत मार्ग चिन्ह सम्मिलित थे जो साम्राज्यिक रोम के क्रमिक विनाश का वर्णन करते हैं, और साम्राज्यिक मूर्ति पूजक रोम 523 में बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें राज्य के रूप में पोप तंत्र को सिंहासन पर स्थापित करने के अपने कार्य में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतीक है। पोप तंत्र को दानियल 11 के 16वें पद के रविवार विधि पर सिंहासन पर स्थापित किया जाता है, जो मार्ग चिन्ह संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्य का प्रतीक है। वे मूर्ति पूजक रोम के क्रमिक विनाश के मार्ग चिन्हों में निरूपित है।
कित्तीम के जहाज रोम के लिए एक आर्थिक विपत्ति का प्रतीक थे, क्योंकि वैंडलों की नौसेना ने भूमध्य सागर के समुद्री व्यापार मार्गों में भारी विनाश उत्पन्न किया। अंतिम दिनों में इस्लाम को पृथ्वी के राजाओं के लिए एक आर्थिक विपत्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वैंडल और उनके जहाज दूसरी तुरही की शक्ति थे, और तीनों हाय इस्लामी तुरही शक्तियां हैं। पहली अरब थी, दूसरी तुर्की और तीसरी विश्वव्यापी है।
जहाज आर्थिक शक्ति का एक प्रतीक है, और पवित्र शास्त्र में कित्तीम के जहाज आर्थिक शक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। वे जहाज समुद्रों के मध्य एक क्रोधित पूर्वी पवन द्वारा डुबा दिए जाते हैं, और पवित्र शास्त्र में इस्लाम पूर्व की संतान है। जब भविष्यद्वाणी की घटनाओं के क्रम में इस्लाम का उल्लेख होता है, तब वो एक आर्थिक संकट उत्पन्न करता है। इस्लाम का निरूपण बिलाम के प्रसंग में एक गधी के रूप में किया गया है, जो उसी इब्रानी शब्द से संबंधित है जिसका अनुवाद पवित्र शास्त्र में इश्माएल के प्रथम परिचय में जंगली मनुष्य के रूप में किया गया है। भविष्यद्वाणी के स्तर पर इश्माएल इस्लाम का पिता है, इससे इब्राहीम के इश्माएल के पिता होने का निषेध नहीं होता, परंतु पवित्र शास्त्र में इश्माएल के 12 गोत्र पूर्व की पसंतान के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम दिनों में बिलाम, जो एक झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतीक है, अपनी गधी को 3 बार मारता है, जो इस्लाम के 3 प्रहारों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 गलाम उन प्रहारों में पहला था, और उसने उस मुहर लगाने वाले स्वर्गदूत के आगमन को चिह्नित किया, जो कलह की प्रचंड पूर्वी पवनों के समय पूर्व से ऊपर उठता है। इस्लाम का 2रा प्रहार द्विविध है, क्योंकि 2रा चरण दुगुना होने का संकेत देता है। 7 अक्टूबर 2023 को इस्लाम ने अप्रत्याशित रूप से वास्तविक इज़राइल पर प्रहार किया, और जब नैशविल, टेनेसी पर इस्लाम द्वारा अप्रत्याशित रूप से प्रहार किया जाएगा, तब आत्मिक इज़राइल पर प्रहार हो चुका होगा। बिलाम की कथा में 2रा मार्गचेन 2 दाखबारी के बीच आया, और सेनाओं के यहोवा की वे 2 दाखबारियां प्राचीन वास्तविक इज़राइल और आधुनिक आत्मिक इज़राइल अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका थीं। बिलाम का 3रा मार्गचेन वो था जब गधी बोली, और बोलने का वो प्रतीक जो उन 144,000 के मुहरबंदी के समय के अंत को चिह्नित करता है, जो 9 गलाम पर आरंभ हुआ था, रविवार का विधान है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है। प्रकाशित वाक्य 11 का महान भूकंप वही रविवार का विधान है, जहां 3रा हाय शीघ्र आता है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका गधी और जकरिया बोलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता उन 24 याजकीय दलों में से 8वें दल का था, जिन्हें दाऊद ने मंदिर में सेवा करने के लिए व्यवस्थित किया था। याजक जकरयाह अपने पुत्र यूहन्ना के जन्म तक अविश्वास के कारण मूक कर दिया गया था, और वो संख्या 8 का प्रतीक है, जो याजकाई का एक प्रतीक है। रविवार के विधान के समय याजकों की अंतिम पीढ़ी, जिसका प्रतिनिधित्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता है, उसके पिता जकरयाह के द्वारा निरूपित रीति से बोलेगी। मसीह ने यूहन्ना की पहचान एलिया के रूप में की, और एलिया का अंतिम दिनों का संदेश पिता और बालक के संबंध द्वारा निरूपित होता है, जैसा जकरयाह और यूहन्ना के साथ था। यूहन्ना का पूर्व रूप यिर्मयाह में पाया गया था, जिससे कहा गया था कि यदि वो लौट आए तो वो परमेश्वर का मुख होगा। यिर्मयाह 18 जुलाई 2000 की पहली निराशा पर विलाप कर रहा था, और यदि वो लौट आता तो रविवार व्यवस्था के समय वो परमेश्वर का मुख बन जाता। जब उसने हबक्कूक का वो भविष्यवाणी संदेश प्रस्तुत किया जो विलंबित हुआ था, परंतु अंत में बोलेगा यिर्मयाह, और इसलिए यूहन्ना और इसलिए पतरस को हबक्कूक का संदेश उस बिंदु पर बोलना था जब इस्लाम का गधा बोलता है, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है। कैसरिया फिलिपी में पतरस, जो पानियम है, उस समयावधि में है जो पर्वत के उस मार्ग चिन्ह से पहले की थी, जिसके पश्चात वह विजयोत्सवी प्रवेश आया, जो क्रूस अथवा रविवार के विधान तक ले गया। उस समयावधि का प्रतिनिधित्व पानियम की लड़ाई द्वारा किया गया है, जो पोप और उसकी प्रतिनिधि शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की विजय पर समाप्त होती है। पानियम 3 प्रतिनिधि युद्धों में से 3रा है, जिनमें से पहला 1982 में बर्लिन की दीवार पर समाप्त हुआ था, और अंतिम अथवा 3रा प्रतिनिधि युद्ध कलीसिया और राज्य के पृथक्करण की दीवार को ढा देने पर समाप्त होता है। 1982 ने एक प्रतिनिधि युद्ध की पराकाष्ठा को चिन्हित किया, जिसे शीत युद्ध कहा जाता था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में आरंभ हुआ था, और पानियम एक ऐसे शीत युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो एक्टियम की लड़ाई द्वारा निरूपित तृतीय विश्व युद्ध पर समाप्त होता है। 3 प्रतिनिधि युद्धों के प्रथम और तृतीय मार्ग चिन्हों के मध्य में यूक्रेन का वास्तविक युद्ध है, जिसका प्रतिनिधित्व 11वें और 12वें पदों में राफिया की लड़ाई द्वारा किया गया है। पानियम एक शीत युद्ध है जो तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाता है, जैसा कि उस शीत युद्ध द्वारा निरूपित है जो 1990 में समय के अंत पर समाप्त हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में आरंभ हुआ था। पद 10 और 1990 द्वारा निरूपित मार्ग चिन्हों में पद 11 और 12 तथा 2014 में आरंभ हुए यूक्रेनी युद्ध में और पद 13 से 15 तक तथा मागावाद और वैश्विकतावाद के बीच वर्तमान शीत युद्ध में तीन राष्ट्रपति थे जिन्होंने पोपतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधनों को चिह्नित किया।
रॉनल्ड रीगन पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ एक गुप्त गठबंधन था जो शैतानी फातिमा भविष्यवाणियों के संदर्भ में एक रूढ़िवादी पोप था और पद 10 के भविष्य सूचक इतिहास से संबद्ध है। ओबामा का राष्ट्रपति काल पद 11 और 12 में राफिया के युद्ध के इतिहास के साथ मेल खाता है। उसके राष्ट्रपति काल में दो प्रतीकात्मक पोप थे क्योंकि दूसरा वेमार्क एक द्विगुणन की पहचान करता है। पद 13 से 15 के तृतीय वेमार्क में पोप संयुक्त राज्य का पहला पोप है। हमने प्रारंभ में ये मान लिया था कि पोप लियो जॉन पॉल द्वितीय के प्रतिरूप के अनुसार एक रूढ़िवादी पोप था, परंतु जब इसे त्रिगुणित अनुप्रयोग की भविष्य सूचक व्याख्या के अंतर्गत लागू किया जाता है तब तृतीय वेमार्क में पहली दो परिपूर्तियों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इसलिए लियो ही रूढ़िवादी जॉन पॉल द्वितीय है। वो इन्क्विजिशन कार्यालय का पूर्व प्रमुख बेनेडिक्ट 16वां है जिसने ओबामा के कार्यकाल के दौरान वुक पोप फ्रांसिस के लिए पदत्याग किया। पहला प्रॉक्सी युद्ध एक पद द्वारा, दूसरा दो पदों द्वारा और तीसरा तीन पदों द्वारा निरूपित किया गया है। 1989 में समाप्त होने वाला शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में आरंभ हुआ और एक्टियम की लड़ाई द्वारा निरूपित तृतीय विश्व युद्ध उस शीत युद्ध के अंत में आरंभ होता है जो पानियम की लड़ाई द्वारा निरूपित है। तीनों विश्व युद्ध जैसे तीन प्रॉक्सी युद्ध भविष्यवाणी के त्रिविध अनुपयोग से संबंधित सिद्धांतों द्वारा शासित है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने एक शीत युद्ध को आरंभ किया जो 1945 में रूजवेल्ट से गिने जाने वाले 8वें राष्ट्रपति के साथ समाप्त हुआ जो रीगन था। 1989 में समय के अंत पर रीगन ने ट्रंप तक पहुंचने वाले 8 राष्ट्रपतियों की एक श्रृंखला आरंभ की जो 7 में से है। ट्रंप का शीत युद्ध 2015 में आरंभ हुआ जब उसने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी प्रत्याशिता की घोषणा की और वैश्विकतावादियों को उद्वेलित कर दिया। दानियल 11 पद 2 की पूर्ति में वो शीत युद्ध रविवार के विधान पर समाप्त होता है जो एक्टियम की लड़ाई है अर्थात रोम के सर्वोच्च शासन करने से पहले उसकी तीसरी बाधा। रूजवेल्ट से रीगन तक 8 राष्ट्रपति हुए और रीगन से ट्रंप तक भी 8 राष्ट्रपति हुए। रूजवेल्ट द्वितीय विश्वयुद्ध को चिह्नित करता है। 12 अप्रैल 1945 को उसकी मृत्यु हुई और फिर 8 मई को जब यूरोपीय युद्ध समाप्त हुआ तब ट्रूमैन राष्ट्रपति था और 2 सितंबर को जब प्रशांत युद्ध समाप्त हुआ तब भी वही राष्ट्रपति था। यूरोपीय युद्ध मुख्यतः स्थल युद्ध था और प्रशांत युद्ध समुद्र युद्ध था, ठीक उसी प्रकार जैसे पानियम एक स्थल युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है और एक्टियम एक समुद्री युद्ध का। पहला अंतिम को निरूपित करता है और 8 राष्ट्रपतियों का क्रम दानियल 11 पद 2 और 3 की गवाही पर भी स्थापित है तथा इस पहेली पर भी कि 8वां उन 7 में से है। प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी पशु के इतिहास के आरंभ में प्रथम 2 कॉन्टिनेंटल कांग्रेसों में राष्ट्रपतियों के कार्यकालों की 7 अवधियां थीं। उस इतिहास में जॉर्ज वाशिंगटन को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। प्रथम आधिकारिक राष्ट्रपति के रूप में द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में वाशिंगटन की नियुक्ति प्रारंभ में ही 7 राष्ट्रपतियों में से 8वें के रूप में वाशिंगटन का प्रतीक है। पहला राष्ट्रपति पहले 7 राष्ट्रपतियों में से 8वां था और अंतिम राष्ट्रपति वो 8वां है जो उन 7 में से है। याजक जकरिया यूहन्ना के जन्म के समय बोलता है जब गधा बोलता है और जब पृथ्वी का पशु बोलता है। यही वो स्थान है जहां हबक्कुक का दर्शन भी बोलता है। यूहन्ना का जन्म जो रविवार विधि के समय 144,000 के ध्वज का प्रतिरूप है याजक जकरिया की अंतिम पीढ़ी है। जकरिया याजकों के 24 दलों में से 8वें दल में था। रविवार विधि पर जकरिया याजक बोलते हैं जब इस्लाम गधा बोलता है और संयुक्त राज्य अमरीका अजगर के समान बोलता है। उस मार्ग चिन्ह पर पोपसी का घातक घाव चंगा हो जाता है और वो 8वीं बन जाती है जो उन 7 में से है।
ट्रंप भी वो आठवां है जो उन सात में से है, और वही पशु की प्रतिमा का निर्माण करता है जो रविवार विधि पर अंतिम रूप ग्रहण करती है। तब 144,000 का दो परमेश्वर का मुख बन जाता है और तीसरे स्वर्गदूत की ऊंचे शब्द कम की पुकार में संदेश बोलता है। वो याजक तप्त परमेश्वर का मखिया आठवीं कलीसिया है जो उन सात में से है।
रूजवेल्ट उन आठ राष्ट्रपतियों का आरंभ करता है जो 1989 में अंत के समय तक ले जाते हैं, और वो द्वितीय विश्व युद्ध से शीत युद्ध तक के संक्रमण को चिह्नित करता है जिसका अंत 1989 में होता है। राष्ट्रपति ट्रूमन ने रूजवेल्ट के पश्चात पद ग्रहण किया और उस समय शासन किया जब पृथ्वी और समुद्र की वे लड़ाइयां जिनसे द्वितीय विश्व युद्ध बना था समाप्त हुईं। राष्ट्रपति के रूप में ट्रूमन ने उस समय शासन किया जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का आरंभ हुआ। रूजवेल्ट और ट्रूमन का संबंध 1945 वर्ष के द्वारा स्थापित होता है। उस वर्ष दोनों राष्ट्रपति थे और उसी वर्ष द्विगुणित युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध था समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और शीत युद्ध आरंभ हुआ। 1985 में भी 1945 की भांति दो राष्ट्रपति थे, रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज बुश प्रथम। रीगन ने शीत युद्ध का अंत किया और जॉर्ज बुश प्रथम ने 1 अक्टूबर 1990 को 45वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की कि वो सर्वप्रथम और मुख्यतः एक वैश्विकतावादी इस हुए लिफ्ट वब एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के विषय में बात की। उस भाषण में उसने कहा, इन अंधकारमय यंत्रों को पीछे छोड़ देना अंधकार युग में जहां उनका स्थान है और एक नई विश्व व्यवस्था तथा शांति के दीर्घ युग की ओर अग्रसर एक ऐतिहासिक आंदोलन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ना हमारे हाथों में है। इस भाषण में बुश ने इस अवधारणा को शीत युद्धोत्तर सहयोग, खाड़ी संकट, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करने और विधि के शासन पर आधारित राष्ट्रों की एक नई साझेदारी से संबद्ध किया। बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश को पहली बार कुछ सप्ताह पूर्व 11 सितंबर 1990 को कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए लोकप्रिय बनाया। इस तथ्य पर ध्यान दीजिए कि बुश ने अपने संयुक्त राष्ट्र के भाषण को ऐसे संदर्भ में रखा जहां उसने हाल ही में समाप्त हुए शीत युद्ध की समाप्ति को अंधकार युग के संदर्भ में पहचाना। अंधकार युग का अंत 1798 में अंत समय पर हुआ और 1989 में बुश भी अंत समय पर था। ध्यान दीजिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश का उसका पहला प्रयोग ऐसे समय हुआ जब इस्लाम राष्ट्रों को क्रोधित कर रहा था और वो भाषण 9/11 को दिया गया था। रूजवेल्ट से लेकर कार्टर तक 8 राष्ट्रपति हुए और रीगन से लेकर ट्रंप तक भी 8 राष्ट्रपति हुए। ट्रंप अंतिम राष्ट्रपति है और उसका प्रतिरूप पहले राष्ट्रपति में पाया गया था जो पहले 7 राष्ट्रपतियों में 8वां था। 1798 में अंत समय पोप सत्ता के घातक घाव की पहचान कराता है और पोप सत्ता वही शक्ति थी जो अंधकार युगों के दौरान यूरोप के राजाओं पर शासन करती थी। प्रकाशित वाक्य 17 में उस संबंध को एक ऐसी वेश्या के रूप में चित्रित किया गया है जो एक पशु पर सवार है और उस पर शासन कर रही है। 1798 में यूरोप के राजाओं का समर्थन हटा लिया गया और वो पशु मृत हो गया। 1799 में पोप निर्वासन में मर गया। 1798 और 1799 अपने पूर्णतम अर्थ में अंत समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मसीह के समय में अंत समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से चिह्नित होता है और फिर 6 महीने बाद मसीह के जन्म से। 1990 में बुश के वक्तव्य बुश को उन दो राष्ट्रपतियों में दूसरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अंत समय को चिह्नित करते हैं और वैश्विकतावाद की ओर बढ़ने को भी चिह्नित करते हैं जो अजगर की शक्ति है। बुश का प्रतीकवाद रविवार की व्यवस्था की ओर एक कदम को चिह्नित करता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलकर बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य के रूप में समाप्त हो जाता है। रविवार की व्यवस्था पर संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की आवाज बन जाता है, ठीक उसी संदर्भ में इस्लाम जातियों को क्रोधित कर रहा है और 9 सितंबर चिह्नित होता है 11 सितंबर 1990 को, जब पहले बुश ने कांग्रेस के समक्ष अपने वैश्विकतावादी कार्यक्रम के विषय में कहा, तब वो इस बात का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा था कि 2001 में 9 सितंबर पर इस्लाम फिर से जातियों को क्रोधित करेगा, परंतु तब राष्ट्रपति अंतिम बुश होगा।
8 राष्ट्रपतियों में से प्रथम रूजवेल्ट ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिह्नित किया और उसके पश्चात अगले राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र का आरंभ कराया। 8 राष्ट्रपतियों में से प्रथम रीगन ने 1945 में शीत युद्ध के अंत को चिह्नित किया और उसके पश्चात अगले राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र को बढ़ावा दिया। 8 राष्ट्रपतियों में से अंतिम राष्ट्रपति उस शीत युद्ध का अंत करेगा जो तब आरंभ हुआ था जब उसने 2015 में चुनाव लड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की थी, और तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ करेगा। वो बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य को बाइबल की भविष्यवाणी के 7 राज्य संयुक्त राष्ट्र के मस्तक में परिणत करेगा और फिर रविवार के कानून के समय उस राज्य को पशु को देने पर सहमत होगा। जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध स्थल युद्ध और समुद्री युद्ध से मिलकर बना था, उसी प्रकार अंतिम राष्ट्रपति के पास एक शीत युद्ध होगा जिसका प्रतिनिधित्व पेनियम के स्थल युद्ध द्वारा होता है जो एक्टियम के समुद्री युद्ध तक ले जाता है। संडे लॉ के समय 2015 में ट्रंप द्वारा वैश्वीकरणवादियों को उकसाने से आरंभ हुआ शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के स्थल और समुद्री युद्धों द्वारा निरूपित है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अगला चरण संयुक्त राष्ट्र के वैश्वीकरण का था, ठीक वैसे ही जैसे रीगन और बुश के साथ शीत युद्ध के अंत में हुआ था। पहले संयुक्त राज्य संडे लॉ पर समाप्त होता है, फिर बुश की नई विश्व व्यवस्था 7 राज्य का परिचय कराती है जो तुरंत ही 8 राज्य को अपना अधिकार देने पर सहमत हो जाता है। बुश पहला और बुश अंतिम। पहले द्वारा 9/11 के समय कांग्रेस के समक्ष नई विश्व व्यवस्था की घोषणा और अंतिम द्वारा 2001 के पैट्रियट एक्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों मार्ग चिन्ह उस संदर्भ के भीतर स्थापित किए गए हैं जिसमें इस्लाम राष्ट्रों को क्रोधित करता है। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।